वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज माइंड विद मसल पॉडकास्ट। मेरा नाम है नवजोत सिंह। और गाइज, पॉडकास्ट शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी एक मैं चेतावनी दे दूं आपको कि आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें सुनाई देंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज मैं कुछ ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग मुझे करनी पड़ रही है जहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज़ें चल रही हैं, काम चल रहा है पीछे। बट पॉडकास्ट जैसे हम करते हैं, आपके सवालों का आंसर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़े से अपडेट्स। इस हफ्ते माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल के ऊपर 6 वीडियोस टोटल रिलीज़ हुई हैं। 6 दिनों का वर्कआउट जो हमने नई वर्कआउट सीरीज़ शुरू की है, पम्प्ड अप पीपीएल, जो कि एक पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन के ऊपर बेस्ड है। नया वर्कआउट प्लान मैंने शुरू किया और उस वर्कआउट प्लान की पहली 6 वीडियोज़ इस हफ्ते अपलोड हुई हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन के ऊपर बेस्ड एक वर्कआउट प्लान मैं बनाऊं आपके लिए, और मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरह से प्रोग्राम्ड वर्कआउट प्लान पुश पुल लेग के ऊपर बेस्ड मैं आपको दूं। आई एम श्योर के बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प होगी। अब तक के 800-850 के करीब लोग हैं जिन्होंने वर्कआउट प्लान स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे कैसे पता है कि 800-850 लोगों ने शुरुआत की है, क्योंकि जो लिंक मैंने PDF का लिंक दिया है वीडियोज़ के नीचे, वो PDF करीबन 850 के करीब लोगों ने डाउनलोड किया है। उसका डाटा होता है हमारे पास, हम पता कर सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग हुई है वो कितने लोगों ने डाउनलोडिंग किया है। तो करीब 850 लोगों ने ऑलरेडी एनरोल किया है। अगर आप भी चाहते हो फ्री वर्कआउट प्लान जो कि पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन के ऊपर बेस्ड हो, अच्छे से प्रोग्राम्ड हो, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं बिगिनर हूँ, क्या मैं ये वाला वर्कआउट प्लान शुरू कर सकता हूँ। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप मत करो, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एब्सोल्यूट बिगिनर अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए मेरी जो दूसरी वर्कआउट सीरीज़ है, ट्रेनिंग अंडर नवजोत, अगर आप वो स्टार्ट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। एक दो बार वो आप यूज़ करके देखो, उसके बाद आप इस वर्कआउट प्लान पे स्विच कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी इस वर्कआउट प्लान से। और इसके साथ शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। पहला क्वेश्चन धाकड़ में दिया, इनका नाम मुझे लेना नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन किया है, मुझे जिम जाते 3 मंथ्स हो गए हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो बनी है बट वेट और पेट कम नहीं हो रहा है, क्या करूं। देखो धाकड़ में दिया साहब, ऐसा है कि आपका वेट और पेट, पहली बात तो इतनी जल्दी 2-3 महीने में कम नहीं होता है। टमी के अराउंड जो आपका फैट इकट्ठा होता है, वो आम तौर पे अगर आपका मतलब वेट कम भी हो या फिर फैट कम भी हो, तो टमी के अराउंड जितनी भी आपकी फैट होती है वो आमतौर पे लास्ट में जाती है। मतलब आप अगर फैट लॉस कर भी रहे हो तो भी आपको एकदम से पेट आपका कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वैसे ये डिपेंड करता है कि कितना फैट है, कितने परसेंट फैट है, क्या सिर्फ ऊपरी लेयर है फैट की या फिर अंदर विसरल फैट है। अगर विसरल फैट हो तो उसको जाते जाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप बिगिनर हो तो अभी आपका जो टोटल ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर होना चाहिए। जब तक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ट्रस्ट मी, यू आर प्रोग्रेसिंग इन द जिम। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि आपका मसल मास इंक्रीज़ हो रहा है। एज लॉन्ग एज आपका मसल मास इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे लव हैंडल से, मेरे पेट से, मेरे यहाँ से वहाँ से चर्बी नहीं कम हो रही, क्योंकि उसको बाद में बहुत ईजिली कम किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका मसल मास इंक्रीज़ होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, बाद में आपको फैट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप मसल भी इंक्रीज़ करना चाहते हो, साथ में आप फैट भी लूज़ करना चाहते हो, शुरू में आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपके किसी ऐसी जगह से, जैसे हो सकता है कि आर्म से या फिर थाई से थोड़ी बहुत फैट कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पतले भी होते जाओ और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाए, आपका मसल भी बढ़ता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्राडिक्ट्री गोल्स हैं, प्लीज़ इस बात को समझिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दीजिए, जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप अपना मसल इंक्रीज़ कर सकते हो, अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना होइए अपनी टमी फैट के साथ। अगला क्वेश्चन है बी फिट विद आशीष, पूछते हैं वेटलिफ्टिंग बेल्ट्स और जो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कब यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। Arun_K93 ये भी पूछते हैं, भाई आपके हिसाब से सपोर्टर की हेल्प कब लेनी चाहिए। सपोर्टर की हेल्प, चाहे वो बेल्ट है चाहे कोई और चीज़ है, सपोर्टर की हेल्प तब लेनी चाहिए जब आपको एब्सोल्यूट ज़रूरत हो। एब्सोल्यूट ज़रूरत आपको कब होती है, जब आप अपने आप को मैक्स पुश करने की कोशिश कर रहे हो किसी लिफ्ट में। सपोज करो कि आप आज अपनी डेडलिफ्ट में PR चेक करना चाहते हो, श्योर आपको लेनी चाहिए हेल्प सपोर्टर की, बेल्ट की, या फिर अगर रिस्ट स्ट्रैप यूज़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. लेकिन अगर आप सपोर्टर की हेल्प लिए बिना एक्सरसाइज करते ही नहीं हो तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की हुई है अपनी वीडियोज़ में कि जब आप अननेसेसरीली सपोर्टर की यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो उनको, तो उसके दो मेन नुकसान होते हैं. पहला नुकसान ये होता है कि आपके कुछ मसल्स ना उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते जितने के वो अदरवाइज हो सकते हैं. और दूसरा नुकसान होता है कि आपके कुछ मसल्स का रिक्रूटमेंट पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है. अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उसी तरह से उन मसल्स को रिक्रूट करने के लिए. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोनों चीज़ें, मैं समझाता हूँ आपको. पहली चीज़ जो मैंने आपको बोली कि आपके कुछ मसल्स की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती. अगर आप बिना सपोर्टर के, लेट्स से बिना रिस्ट स्ट्रैप के, आप डेडलिफ्ट या फिर पुलअप्स नहीं लगाते हो तो आपके जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाती. आपके ग्रिप को सख्त करने के लिए जो मसल्स आपके आर्म्स के यूज़ होने हैं उनमें स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाती और आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ आपका वीक लिंक बन जाती है इन लिफ्ट्स में. आप बिना सपोर्टर के उतना ज़्यादा हैवी उठा नहीं पाते या फिर उतने ज़्यादा पुलअप्स चिनअप्स नहीं कर पाते. ये पहला नुकसान है. दूसरा नुकसान कि आपके कुछ मसल्स जो होते हैं उनका रिक्रूटमेंट पैटर्न चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बेल्ट के बिना डेडलिफ्ट, बेल्ट के बिना स्क्वाट लगाते ही नहीं हो तो जो आपकी कोर मसल्स हैं ना, कोर मसल्स का रिक्रूटमेंट पैटर्न चेंज होता है. जैसे कि अगर हम बिना बेल्ट के स्क्वाट लगा रहे हैं तो हम कैसे लगाते हैं कि हम कोर को एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं, अंदर की तरफ एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं. इसके उल्टा जब आप बेल्ट के साथ स्क्वाट लगाने की कोशिश करते हो, डेडलिफ्ट लगाने की कोशिश करते हो, तो आप मसल्स को बेल्ट के अगेंस्ट बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हो. तो अगर आप बिना बेल्ट के कभी डेडलिफ्ट, बिना बेल्ट के कभी स्क्वाट लगाते ही नहीं हो तो आपकी कोर मसल जो है वो उसी तरह से रिक्रूट होने के यूज्ड हो जाते हैं. आपकी बॉडी उसी तरह से उन मसल्स को रिक्रूट करने के यूज्ड हो जाती है, जो कि आपकी इंजरी का कारण बन सकती है जब आप बिना बेल्ट के कोई हैवी वजन नीचे से उठा रहे हो, चाहे आप जिम में, चाहे आप जिम के बाहर कोई हैवी वजन बिना बेल्ट के जब आप उठाने की कोशिश करते हो तो आपके जो मसल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से रिक्रूट होने की कोशिश करते हैं और आपको इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं. इस वजह से मैं इस बात के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ कि आप बिना वजह अननेसेसरली अगर आप सपोर्टर, बेल्ट या फिर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है. जब आपको ज़रूरत है, जब आपको ज़रूरत होने का क्या मतलब, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, अपनी लिमिट्स को चेक कर रहे हो, तब आप सेफ्टी के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करना सही है. लेकिन हर टाइम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. अगला क्वेश्चन है द मार्सीड पूछते हैं डर्टी बल्क फॉर स्किनी गाइज. देखिए, डर्टी बल्क किसी भी तरह के लोगों के लिए सही चीज़ नहीं है. डर्टी बल्क बेसिकली आप कैसे करते हो कि जो भी आपको खाने को मिलता है, चाहे वो कैसी भी चीज़ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कैसी भी है, इस चीज़ की आप परवाह नहीं करते हो. आप सिर्फ खाना और मतलब खाना ठूंसने की तरफ आपका मेन ध्यान है. आप कैसे भी करके अपना वज़न इंक्रीज करना चाहते हो. अगर आप ऐसा करते हो तो श्योर आपका वज़न ज़रूर इंक्रीज होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो वज़न है वो आपका फैट से आएगा. फैट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंक्रीज होगी. मसल्स ने तो जितना उनका, अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर उनको वर्कआउट मिल रहा है, तो जितना उनकी लिमिट है उतना ही बढ़ेंगे वो. उतना मतलब अनलिमिटेड नहीं बढ़ सकते, चाहे आप अनलिमिटेड खाना जितना मर्जी खाते जाओ. मैं आपको बता दूं कि अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए ना आपको बहुत कुछ ह्यूज सरप्लस या फिर बहुत ज़्यादा ठूंस के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. डजंट मैटर कि आप स्किनी गाय हो, आप कैसे भी हो, आपको मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ह्यूज सरप्लस की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ स्लाइट सरप्लस, छोटा सा सरप्लस, अराउंड 8-10% ऑफ योर टोटल कैलरीज आपको सरप्लस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है. इतने से आपको मसल बिल्डिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं. डर्टी बल्क का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर सपोज करो कि आप 50 किलो के हो और आप 70 किलो के होना चाहते हो, तो 70 किलो के आप हो तो जाओगे, लेकिन 70 किलो के जब हो जाओगे तो आपको अपने आप को देखना शीशे में अच्छा नहीं लगेगा. और तब आप क्या करोगे कि आप चाहोगे कि जब मैंने एक्स्ट्रा फैट गेन की है उसको मैं रिड्यूस करूं. वो आप कैसे करोगे? देन आपको जो खा पी रहे थे उस खाने पीने को छोड़ना पड़ेगा और इवेंचुअली आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप वापस पहुँच जाते हो. इसलिए इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. एक तो आप अगर ठूंस के खा रहे हो तो ठूंस के खाना भी आपके लिए एक काम बन जाता है. उसके बाद अगर आपने कटिंग करनी है तो फिर उसको कट करना, अपने खाने को कट करना, भूखे रहना, वो भी एक सज़ा की तरह है. तो ये बोथ वेज़ आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसका कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. आई नेवर रिकमेंड दिस. अगला क्वेश्चन है मार्श_जैक्ड, ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, पूछते हैं हाउ मच प्रोटीन यू टेक, मतलब मैं कितना प्रोटीन खाता हूँ। भाई मैं प्रिसाइजली काउंट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अराउंड 130-140 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैं खाता हूँ, जिसमें से 2 स्कूप मेरे वे प्रोटीन के होते हैं, बाकी सब खाने से आता है। अगला क्वेश्चन मोटू एंड पतलू पूछते हैं, PPL के साथ 15 मिनट कार्डियो कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PPL से इनका मतलब है पुश पुल लेग जो वर्कआउट रूटीन है, उसके साथ 15 मिनट कार्डियो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हो बेशक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कार्डियो क्योंकि बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ, तो फिर वो पूछते हैं कि 15 मिनट या 20 मिनट में कार्डियो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखिए, अगर तो आपको अच्छा लगता है कार्डियो करना, अगर आप अच्छा फील करते हो, आपके गोल्स के लिए सही लगता है आपको कार्डियो करना, तो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना ये एक कंपल्शन सी बना देते हैं कि आपको अपने वर्कआउट के बाद 15 मिनट 20 मिनट के लिए कार्डियो करना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो करना, आपको पसंद है, तो श्योर आप कर सकते हो। नहीं चाहते हो तो अगर नहीं भी करोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उससे। अगला क्वेश्चन स्पर्श जी पूछते हैं, बेस्ट वे प्रोटीन ब्रांड फॉर स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग। सर, वे प्रोटीन ब्रांड फॉर स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग, पहली बात तो वे प्रोटीन अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। अनलेस के आप बहुत सिवियरली डेफिशिएंट हो प्रोटीन में, जैसे कि अगर आपको 100 ग्राम पर डे खाने की ज़रूरत है, आप 30 ग्राम खा रहे हो, तो श्योर 2 स्कूप अगर आप वे प्रोटीन खाओगे तो आपको मसल बिल्डिंग में उससे हेल्प होगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि आपको 100 ग्राम खाने की ज़रूरत है, आप 80 ग्राम ऑलरेडी खा रहे हो, 2 स्कूप आप वे प्रोटीन ले रहे हो, तो उससे आपकी मसल बिल्डिंग स्ट्रेंथ बिल्डिंग एबिलिटी में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र आएगा, तो वो नहीं आएगा डियर। अब वे प्रोटीन से ये चीज़ नहीं होगी, तो वे प्रोटीन के डिफरेंट ब्रांड्स से क्या मतलब फ़र्क पड़ना है, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं है। कोई भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी प्रोटीन इनटेक टोटल जो है उसको थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करेगा, लेकिन अमेजिंग कुछ बेनिफिट्स आपको, विजिबल डिफरेंस नहीं दिखाई देने को मिलेंगे, अनलेस कि आप सिवियरली डेफिशिएंट हो प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है प्रबल हजरा 429, इनके इंस्टाग्राम आइडिया पूछते हैं, सर आई एम डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड बट स्टिल नो रिजल्ट्स इन द जिम। सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं और सही से कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे मैंने देखा है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट पहली बात उनको क्लियर नहीं होता, दूसरी चीज़ अगर वो करने की कोशिश कर भी रहे होते हैं तो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होते प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग में कि उनको बेनिफिट दिखाई देने को मिले। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, मतलब वेट इंक्रीज करते हो बार के ऊपर, डंबल्स जो हैं हफ्ते दर हफ्ते बड़े या भारी उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन होता क्या है कि एक हफ्ता आप काफ़ी ज़्यादा वज़न आपने बढ़ा के एक्सरसाइज कर भी ली, अगले हफ्ते आपसे या तो उतना वज़न इंक्रीज़ नहीं हो पाता या फिर उतने रेप्स नहीं लग पाते, और अगर जब आप अपनी वर्कआउट वॉल्यूम चेक करते हो तो वो वर्कआउट वॉल्यूम आपकी नीचे होती है। सबसे बड़ी गलती जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है वो ये कि लोग अचानक से ना बहुत ज़्यादा या तो वज़न इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, रेप्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, या एक्सरसाइजेज इंक्रीज़ करके ओवरलोड करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली वो काम नहीं कर पाते। मतलब इसका क्या है कि अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा बॉडी को ओवरलोड करने की कोशिश करोगे ना, तो वो एकदम से इसको आप लीनियर तरीके से ऊपर नहीं ले जा सकते इस काम को। ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार, सपोज हम किसी एक एक्सरसाइज की एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से कि आपने आज 50 किलो के साथ बेंच प्रेस लगाई, अगले हफ्ते आपने 60 किलो के साथ सेम रैप्स के साथ 60 किलो के साथ लगाने की कोशिश की और जैसे तैसे करके आपसे लग भी गई, उससे अगले हफ्ते अगर आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो आपको जाहिर सी बात है कि या तो रैप्स या फिर वज़न इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर हफ्ते एकदम से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा के ओवरलोडिंग कर सकें। तो इसका सही तरीका क्या होता है कि आपने बहुत कम, बहुत धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की कोशिश करनी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हो ना जब अपने आप को ओवरलोडिंग के मामले में, तो होता क्या है कि एक वीक में सपोज करो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि 500 किलो का था, उससे अगले हफ्ते आपने ओवरलोड करके उसको 800 या 900 पे पहुंचा दिया, उससे अगले हफ्ते 800-900 से थोड़ा सा नीचे आके आप 600-700 पे आ गए, 600-700 किलो पे आ गए, ठीक है, उससे अगले हफ्ते फिर आपने थोड़ा सा ऊपर गया, आप फिर 700 पे आ गए। तो जब आप 5-7 हफ्तों की एवरेज वॉल्यूम देखते हो ना, एवरेज वर्कआउट वॉल्यूम देखते हो, तो वो एवरेज लगभग सेम ही निकल आती है, लगभग सेम आपकी 600-650 अगर वर्कआउट वॉल्यूम निकल रही है पर वीक, तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है। बेशक आप सोच रहे हो अपने मन में कि मैंने तो हैवी उठाने की कोशिश की थी, यस आपने हैवी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे हफ्ते आपसे उतना हैवी या तो उठाया नहीं गया या फिर उतने रेप्स नहीं निकले, तो इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का सही तरीका ये होता है कि आप बहुत धीरे धीरे से अपनी वर्कआउट वॉल्यूम को इनक्रीज़ करते हो, ठीक। मेक श्योर कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड सही से करो, वॉल्यूम को धीरे धीरे करके बहुत स्लोली ऊपर लेके जाना होता है। एकदम से रैप्स या वजन या एक्सरसाइजेस एकदम से हम ऐड नहीं करते, इस चीज़ का ध्यान रखो, श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सौरव 54_C पूछते हैं, भैया ट्रेनिंग विद नवजोत सीरीज और योर पुश पुल लेग सीरीज फॉर बेटर मसल रिकवरी एंड ग्रोथ, आई एम इंटरमीडिएट लेवल। ओके सौरव भाई, देखिए दोनों ही प्रोग्राम्स की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह है। मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि एज़ लॉन्ग एज़ के आप अच्छे तरह से वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट स्प्लिट्स का कुछ बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ आप पुश पुल लेग को आप कंपेयर करना शुरू कर दो अपर बॉडी लोअर बॉडी के साथ, तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एज़ लॉन्ग एज़ आपकी जो टोटल वर्कआउट वॉल्यूम है वो वीकली सिमिलर रह रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि आप ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेरी नज़र में कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको 3-4 बता देता हूँ जो कि मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम करोगे फॉलो, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ कि आपको वर्कआउट वॉल्यूम का आपका पता होना चाहिए, अच्छे से आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको इंटेंसिटी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली यूज़ करना आना चाहिए आपको। तीसरी चीज़, आपके वर्कआउट्स में थोड़े थोड़े टाइम के बाद, 3-4 हफ्तों के बाद कुछ नयापन आना चाहिए। वो नयापन किसी भी वजह से हो सकता है, जितने भी चीज़ें मैंने ट्रेनिंग विद नवजोत या फिर पुश पुल लेग में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो उनका अगर आप किसी भी वर्कआउट प्लान में ध्यान रखोगे तो भी आपको फ़र्क जो है वो दिखाई देने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई सा भी स्प्लिट फॉलो करोगे तो उससे आपको मसल रिकवरी में, मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ बिल्डिंग में फॉर श्योर फ़ायदा होगा। ओके सो ये था इस हफ्ते का क्विक एपिसोड, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, लेकिन मेरे पास इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं था किसी क्वाइट जगह में जाके मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर पाऊँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि हर रोज़ माइंड विद मसल यूट्यूब चैनल के ऊपर हर रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं ऑक्यूपाइड था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हो सके मैं आंसर कर पाऊँ। अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी आंसर हुआ है तो डोंट वरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना क्वेरी लिख के भेज सकते हो, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।